समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल भी होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। साथ ही सुनवाएंगे आपको उन विशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या जयंती। और परिक्रमा के आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट वीसी प्रमोद। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और वीसी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।
वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड इफ आई मे से गुड इवनिंग टू सिद्धार्थ। वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो एज माय को होस्ट एंड लिसनर्स। एज सिद्धार्थ राइटली सेड, यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा 100.1 एफएम गोल्ड एंड वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया reports, capsule, business, tributes and much more. All these over the next 30 minutes, but we begin with the news headlines first. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi says Tamil Nadu has made a huge contribution in taking India forward in the space sector.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा होम्योपैथी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और कार्य दक्षता महत्वपूर्ण।
10 न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स टेक ओथ।
दिल्ली की अदालत ने न्यायिक हिरासत में अपने वकीलों से मिलने के लिए अधिक समय मांगने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की।
आईएमडी इश्यूज ऑरेंज अलर्ट फॉर रेन इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टुडे।
और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we'll talk about World Homeopathy Day. सिद्धार्थ, आपको याद होगा बचपन में जब हमारी तबीयत खराब हो जाती थी तो समटाइम्स पेरेंट्स वुड से कि चलो आयुर्वेद अगर काम नहीं कर रहा तो ट्राई होम्योपैथी।
बिल्कुल,
आपके साथ कैसे हुआ है?
जी, हमारे घर में भी सबके, मुझे लगता है हमारे लिसनर्स भी इसको अपने आप से रिलेट करेंगे कि सबके घर में होम्योपैथिक की दवाएं होती थी और हमारी जो नानी और दादी होती थी उन्हें इस बारे में काफी अनुभव होता था और छोटे मोटे मर्ज को तो वो ऐसे ही दूर कर देती थी।
एग्जैक्टली, एंड आई रिमेम्बर देयर टू बी दी स्मॉल व्हाइट कलर के ग्लोब्यूल्स, ना छोटे छोटे दाने टाइप होते थे, बड़ा टेस्टी होता था वो।
जी, और वो जो छोटी छोटी सफेद वाली गोलियां होती थी ना, आपको बता दूं कि जब मैं भी बच्चा था और दूसरे बच्चे भी, तो कई बार जब उसमें सोल्यूशन नहीं मिला होता है तो उसको खाने के काम में भी आती थी। और कई बार ये एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि ये एक ऐसी पद्धति है जिसके बारे में कोई बहुत ज्यादा, मतलब अगर हमारे पास जो प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन के लिए भी आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं।
Exactly.
कि ऐसा हो गया बचपन में, आपको चोट लग गई, आपको सर्दी हो गई, कोई ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे रेडीमेड सॉल्यूशंस होते थे और हम उसे ले लेते थे।
एब्सोल्युटली।
और आज हम इतनी सारी बात क्यों कर रहे हैं?
बिकॉज टूडे इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे।
जी,
इट्स सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन दिस डे टू ऑनर द वर्क ऑफ जर्मन फिजिशियन एंड केमिस्ट डॉक्टर सैम्युअल हाइनमैन ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी द 10th ऑफ अप्रैल। Homeopathy, an alternative medicinal practice, claims to treat diseases and disorders applying the principle of curing like with like.
बिल्कुल, और होम्योपैथिक एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो मानती है कि शरीर जो खुद को ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की वो अपने आप में एक पूरा डिफेंस मैकेनिज्म ऊपर वाले ने हमें दिया है। और होम्योपैथिक दवाओं द्वारा काफी सालों से बीमारियों का उपचार किया जा रहा है, लेकिन हाँ, कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड के टाइम पे भी हमने देखा था कि अदर देन एलोपैथी, आयुर्वेदा या होम्योपैथिक दवाएं जिस तरीके से लोगों ने ऐसा प्रिवेंशन, हम ये कहें कि काफी उसमें लोगों ने इसका प्रयोग किया था। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो काफी कम साइड इफेक्ट्स इसमें होते हैं। और 1700 के अंत में जर्मनी के में इस चिकित्सा को विकसित किया गया था और इसके बाद फिर धीरे धीरे इसका प्रचार, उसका प्रसार विश्व के दूसरे देशों में हुआ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो किसी भी पद्धति को अपनाना, अगर वो बहुत आसान है तो उसको अपनाना बहुत आसान हो जाता है।
एब्सोल्युटली।
तो शायद यही एक वजह है कि होम्योपैथी को लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हो रही है।
करेक्ट। होम्योपैथी इज अ होलिस्टिक मेथड ऑफ हीलिंग दैट यूजेस सब्सटेंसेस टू हेल्प द बॉडी हील ऑन इट्स ओन। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, द नेम होम्योपैथी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक होमियो, व्हिच डिनोट्स सिमिलर and pathos, meaning suffering or disease. It is a practice that believes in curing the disease based on the principle of like cures like. Homeopathy is a therapeutic method of treatment based on the concept of individualization and holism. Homeopathy is a unique system of medicine in terms of its sources and preparation. The method of preparation includes the potentization of medical substance to the minute level by which the most inert substance can become the most potent dynamic medicine enough to stimulate the body's self-healing capability.
और होम्योपैथी के इसी फायदे और सिद्धांतों को बताने के लिए पूरी दुनिया हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाती है. होम्योपैथी के फाउंडर जर्मन डॉक्टर हैनीमन की जयंती पर इस दिन को समर्पित किया गया है. और इसके बड़े सारे अगर हम देखें तो 6 सबसे मजबूत सिद्धांत हैं जो हमें होम्योपैथी को प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है. जैसे कि होम्योपैथी सिंगल उपाय के सिद्धांत पर काम करती है. ये होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि एक ही मेडिसिन शारीरिक मानसिक और भावनात्मक लक्षणों के इलाज करने में मदद करती है. एक समय में एक ही दवा दी जाती है. और सबसे बड़ी चीज ये है, आपने ये भी देखा होगा कि जब भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको बड़ी हिस्ट्री बतानी पड़ती है. दे बिलीव अ हिस्ट्री सिस्टम कि आपकी फैमिली में किसी को ऐसे लक्षण नहीं
कर रहे
हैं. वो आपके रूटीन के बारे में बहुत डिटेल में पूछते हैं. तो वो एक ऐसी चीज है कि हमें जरूरत है कि सही व्यक्ति तक पहुंचने की. क्योंकि अगर वो व्यक्ति सही है और उसने आपके रोग को सही तरीके से पकड़ लिया है और वो दवाएं इस तरीके से दे रहे हैं तो काफी हद तक लोगों को फायदा भी होता है.
वेरी ट्रू. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टुडे सेड दैट रिसर्च एंड प्रोफिशिएंसी आर क्रूशियल फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ होम्योपैथी एंड देयर वाज अ नीड फॉर ऑथेंटिक मेडिकल रिसर्च टू वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथी. President Murmu was speaking on the occasion of a two-day homeopathic symposium being held in New Delhi to mark the World Homeopathy Day. President Murmu praised the global acceptance of homeopathy as an accessible treatment method and applauded various institutions including the Ministry of Ayush and the National Institute of Homeopathy for their efforts in promoting homeopathy in India.
होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्वीकार्यता तथा लोकप्रियता को और अधिक बढ़ाने में रिसर्च और प्रोफिशिएंसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. भारत में होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए मैं केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी तथा ऐसे अन्य सभी संस्थानों की सराहना करती हूँ.
और इसी इन्हीं सब फायदे की वजह से आज की तारीख में पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग होम्योपैथी में भरोसा रखते हैं. और जैसा कि आपने कहा कि वो ट्रेडिशन वो परंपरा वो आगे बढ़ रही है और लोग होम्योपैथी को अपना रहे हैं.
एब्सोल्युटली.
और श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और ये जानने का उनके पास क्या विशेष है. और विसी, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, इससे जुड़ी हुई गतिविधियां सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं. और ऐसे में निर्वाचन आयोग भी पूरी कोशिश कर रहा है कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए ताकि वोट देने के लिए जो उनके अंदर किस तरह से उन्हें अपने उम्मीदवार का चयन करना है उसके बारे में बहुत सारा जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है. और नागपुर की अगर हम बात करें तो वहां पे मतदाता जागरूकता के लिए मतदाता जागृति पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसका लोगों में जिस तरह का रिस्पांस आया है इसके कारण इसको एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया रिकॉर्ड अकादमी ने इसको दर्ज किया है. लोगों की कितना ज्यादा उत्साह है आगामी चुनाव को लेकर, तो इसके बारे में अधिक जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता.
स्वीप मुहिम के अंतर्गत मतदान कर लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व में भाग ले सके, इसके लिए नागपुर प्रशासन की ओर से व्यापक जनजागरण किया जा रहा है. हाल ही में कस्तूरचंद पार्क में हुई मतदाता जागृति पाठ को एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया रिकॉर्ड अकादमी ने दर्ज कर पुरस्कार देकर सराहा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ विपिन इटनकर के मार्गदर्शन में स्वीप के तहत विशेष पहल आयोजित की गयी. मतदाता जागरूकता पाठ के लिए 7,500 मतदाताओं का लक्ष्य रखा रखा गया था। नागपुर वासियों ने बड़े उत्साह से 1100 अधिक उपस्थिति दर्ज कर 8100 मतदाताओं की उपस्थिति का सफल प्रदर्शन किया। इस अवसर पर स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिकार है शीर्षक से एक ऑडियो वीडियो जारी किया गया। कलेक्टर डॉक्टर इटनकर की उपस्थिति में सभी मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। नागपुर में 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मिशन डिस्टिंक्शन के अंतर्गत बड़े पैमाने पर जन जागृति की जा रही है। बेशक व्यापक जन जागृति से बड़ी मात्रा में लोग मतदान करने आए, यह लक्ष्य प्राप्त करना आसान होगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
From Maharashtra, we move on to the northeast in Agartala. In a bid to conduct polls in a free, fair and transparent manner, the Chief Electoral Officer of Tripura today organized the Mission Violence-Free Election 2024. The prime objective of this initiative is to ensure that there is no poll-related violence. We have more on this in our report from our Agartala correspondent.
In order to prevent any kind of violence or any untoward incident during election, the State Election Department has launched the Mission Violence-Free Election 2024. Speaking on the occasion, Chief Secretary of Tripura, J.K. Sinha, said that elections which are considered as festival of democracy will be celebrated in a real manner when a time comes where there is no need of security force to conduct polls. He said the antisocial elements should be dealt with in a strictest manner.
पूरे तमिलनाडु राज्य में 39 लोकसभा सीट, वहाँ एक फेज में इलेक्शन हो रहा है और हम लोगों के पास 2 लोकसभा सीट है और हम लोगों को 2 फेज में इलेक्शन करना पड़ रहा है। ये हम लोगों का दायित्व तो है कि हम समाज के सभी तत्वों से ऐसा संवाद स्थापित करें जो हिंसा रूपी जो तत्व तो है वो बाहर आए ही नहीं।
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमिताभ रंजन सेड दैट सिंस 1st of March टिल डेट 17,000 पीपल हैव बीन अरेस्टेड।
बहुत ही चैलेंजिंग टाइम फेस कर रहे हैं आप। From the beginning of March till today, we've had almost 2,500 flag march. As we speak, one company is doing a flag march right from here to Kumar Ghat on the national highway and on the state highway, and this will happen every day, one on the north sector and one on the south sector.
DGP Intelligence Anurag said that the Chief Election Commissioner Rajiv Kumar heaped praise for Tripura during a conference recently for conducting violence-free assembly election in 2023. However, he also informed the gathering that CEC has urged that commission should not be let down even in Lok Sabha polls by ensuring that no violence is reported from any corner of the state.
ये इलेक्शन पहले इलेक्शन से आसान नहीं है, ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आपको अपनी इंजेन्युटीज यूज करनी है, कैसे आप फोर्स का प्रेजेंस शो करें, फोर्स का डिप्लॉयमेंट करें और किस तरह से पीसफुल इलेक्शन कराएं।
CEO Tripura Puneet Agrawal said that CAPF personnel will be deployed at all the polling stations in Tripura West and East parliamentary constituencies.
चुनाव में कुछ नए रूल्स आ जाते हैं, कुछ नए इश्यूज होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, तो उन सबको कैसे हमें टैकल करना है, कैसे हमें एंश्योर करना है कि जितने वोटर्स हैं सभी मतदाता बिना किसी भय के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो उनका पोलिंग स्टेशन है वहां पे जाएं और स्वेच्छा से वो अपना मतदान दे पाएं।
कुणाल शिंदे परिक्रमा फ्रॉम आकाशवाणी अगरतला।
बिहार में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में गया, जमुई और नवादा लोकसभा सीटों के साथ 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र, गया जिले और औरंगाबाद जिले के 3-3 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर गठित हुआ है। क्षेत्र से कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
6 विधानसभा क्षेत्रों में से औरंगाबाद को छोड़कर इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गुरुआ, टेकारी, रफीगंज, कुटुम्बा और इमामगंज नक्सल प्रभावित हैं। एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद सुशील कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जो रिकॉर्ड 8वीं बार इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने सीट शेयरिंग समझौते में कांग्रेस की यह पुरानी सीट अपने खाते में शामिल करते हुए अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। श्री कुशवाहा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल के बीच होने की संभावना है। मौजूदा राजनीतिक समीकरण देखें तो इस संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का कब्जा है। वहीं एनडीए के घटक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास इमामगंज और टेकारी की सीटें हैं। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाजपा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच रख रही है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल इस क्षेत्र में बेरोजगारी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विकास की कमी के मुद्दे को उठा रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
And in view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you capsule based on state profile, giving details of number of phases, date of polling, the number of seats and other relevant facts by our correspondent. Now let's move on to Madhya Pradesh and Khajuraho. In our series of Lok Sabha constituencies, we'll take a look at Khajuraho seat in Madhya Pradesh today. More from our correspondent.
Khajuraho Lok Sabha constituency has a special identity for its temples of historical and archaeological importance. The diamonds from the Panna district have changed the fortunes of many people. The situation is similar in politics also. Khajuraho parliamentary seat has become one of the safest seats for the BJP in the state since the last few elections. Khajuraho parliamentary seat consists of 8 assembly constituencies. The total number of voters is around 19,94,000. Of these, there are 10,45,000 male and 9,48,000 female voters, while the number of third gender voters is 33. Overall, 14 candidates are in the fray in this seat. BJP has once again fielded State President V.D. Sharma from this seat. Mr. Sharma had won the last Lok Sabha election by a margin of around 5 lakh votes. The Congress had left the Khajuraho Lok Sabha seat for the Ali Samajwadi Party, but due to the rejection of nominations of SP candidate Meera Yadav, a walkover-like situation has been created for the BJP. Sanjeev Sharma, Akashwani News, Bhopal.
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
We commemorate the 105th anniversary of the Champaran Satyagraha, the first Satyagraha movement led by Gandhiji in India. It was a farmer's uprising who protested against having to grow indigo with barely any payment for it.
Mahatma Gandhi was persuaded by Rajkumar Shukla, an indigo cultivator from Champaran, to lead the movement against exploitation of farmers in the region. Gandhiji noticed that under the Tinkatia system, the Champaran tenant farmer was bound by law to plant 3 out of every 20 parts of his land with indigo for his landlord. Gandhiji reached Champaran in April 1917 and started implementing the similar methods of satyagraha that he had used in South Africa to organize mass uprisings by people to protest against injustice.
The local authorities did not find his visit welcome and they tried to dissuade Gandhiji from undertaking his inquiry. But Gandhiji determinedly began his work from the house of Babu Gorakh Prasad in Motihari, headquarters of the district. He was charged with violating Section 144 of CRPC and served summons. Gandhiji refused to leave Champaran and his popularity soared as the news of his prosecution broke.
On the 18th of April 1917, when Gandhiji appeared in Motihari court, he found 2,000 local people accompanying him. Gandhiji pleaded guilty and read out a statement.
As a law-abiding citizen, my first instinct would be, as it was, to obey the orders served on me. But I could not do so without doing violence to my sense of duty to those for whom I have come. I feel that I could not just now serve them only by remaining in their midst. I could not therefore voluntarily retire. Amid this conflict of duties, I would only throw the responsibility of removing me from them on the administration. I have disregarded the order served upon me, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience.
The Lieutenant Governor of Bihar ordered the withdrawal of case against Gandhiji. But this small step was a giant leap forward in the history of the freedom struggle. The Satyagraha heralded the advent of the Gandhian era in the Indian independence struggle.
Today we remember the freedom fighter Chiravuri Yageshwar Chintamani. C.Y. Chintamani was born on the 10th of April 1880 at Vijayanagaram in Andhra Pradesh. He spent much of his public life in Prayagraj. Right from his young days, Chintamani was drawn to the moderate leaders of the Indian National Congress. He joined the Indian National Congress in 1898 and also became the editor of the newspaper Vizag Spectator. After his joining, the newspaper was renamed as Indian Herald.
However, the pinnacle of Chintamani's journalistic career came with his association with the newspaper The Leader. Published from Allahabad, The Leader emerged as a leading English nationalist newspaper in the United Province. The Leader was a joint venture of leading nationalists including Pandit Madan Mohan Malviya, Motilal Nehru, Sachidananda Sinha and Tej Bahadur Sapru. Chintamani was first brought in as a joint editor with Nagendranath Gupta. He soon became the sole editor of The Leader. The newspaper criticized the British Raj and its policies.
Chintamani left Congress in 1918 to form the Liberal Party with Surendranath Banerjee, Dinsho Vacha, Chimandan Setalwad and Tej Bahadur Sapru. As a liberal, his preferred way to secure freedom was the use of constitutional means. Under the Government of India Act 1919, Chintamani served as the Education Minister of the United Province. Between 1927 and 1936, he was the leader of the opposition in the UP Legislative Council. In 1930, he was invited as a delegate to the first round table conference in London.
Chintamani's fiercely independent personality was reflected in his unwavering commitment to principles. Even after he was awarded the knighthood in 1939, his criticism of the British Raj did not cease. Chintamani served as the editor of the newspaper, The Leader, until his death on the 1st of July, 1941.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में, जानते हैं वहां की हलचल। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की, जिसमें आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।
That's right. In Monte Carlo Masters Tennis, world number one India's Rohan Bopanna and his Australian companion Matthew Ebden will face Mat Pavic of Croatia and Marcelo Arevalo of El Salvador in the men's doubles pre-quarterfinals today. The match is scheduled to begin at 5:10 p.m. And in some business news today, the benchmark equity indices ended higher today with the Nifty hitting fresh record high. BSE Sensex rose 354 points or 0.47% to close at 75,038. Nifty 50 added 111 points or 0.49% to settle at 22,754. In the forex market, the rupee ended marginally lower at 83 rupees and 19 paise against the US dollar today. At the multi commodity exchange, gold futures for June contracts were trading around 71,391 rupees per 10 grams. Silver futures for May contracts were trading around 82,710 rupees per kilogram when reports last came in.
और श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में अब वक्त हो चला है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज जयंती है या पुण्यतिथि है। और आज ही जयंती है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जानी मानी गायिका जयपुर घराने की किशोरी अमोनकर की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किशोरी अमोनकर को बहुत प्रसिद्धि मिली। किशोरी अमोनकर की गायकी में ख्याल, मीरा के भजन, मान सभी का दिल छू लेते हैं। और उन्होंने एक बार अपने केंट्रू में, अगर जयपुर घराने की हम बात करें तो गायकी के बारे में, संगीत के बारे में वो क्या सोचती हैं उन्होंने बताया था।
मेरे लिए तो संगीत पैसा मिलाने की या लोगों के सामने आने जाने की बात ही नहीं। अब इसका इफेक्ट ऐसे होता है कि संगीत कोई भी गाता है तो पंचमी आ जाते हैं तो लोग तो आएंगे ही। सीधी बात, घराने की जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन काबू में लाने के लिए बहुत साल गुजारने पड़ते हैं। साधना बहुत गहरी होती है, काफी दिन लगते हैं, साल लगते हैं, तो हो सकता है कि लोगों शायद, हालांकि किसी भी घराने में सुर और लय की बात ही तो चलती है। अब इस सुर को काबू में लाने के लिए या लय का अंदाजा आने के लिए जो भी साधना करनी होती है वो अलग अलग तरीके से की जाती है।
जी हाँ, और किशोरी अमोनकर सुप्रसिद्ध गायिका गंगूबाई कुडिगर की पुत्री थी और उन्हें संगीत अपनी माँ से विरासत में मिला था। राग भैरवी की बंदिश बाबुल मेरा नैहर छुटा जाए लाखों दिलों की पसंद बन गया।
She was born on this day in 1932 and she is considered to be one of the foremost classical singers in India. She trained under her mother, classical singer Mogubai, and she is from the Jaipur Gharana, but she experimented with various vocal styles in her career.
बिल्कुल, और इस तरह की उनकी शैली में जो दूसरे घराने हैं उनकी भी बारीकियां झलकती हैं। और अगर सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो 2002 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 1985 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 2009 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली और 3 अप्रैल 2017 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन अपने पीछे वो संगीत की अमूल्य विरासत छोड़ गईं।
That's right. Today is also the death anniversary of Birbal Sahni. He's an Indian paleobotanist, was a man of many talents. His interests span from the study of fossils to geology and archaeology. In 1946, he founded what is now known as the Birbal Sahni Institute of Paleobotany in Lucknow. He was also a key figure in the establishment of the Indian Science Education, serving as the president of the National Academy of Sciences, India.
और आज जयंती है उर्दू के प्रसिद्ध शायर और साहित्यकार मोहम्मद अलवी की। उनका पहला कविता संग्रह खाली मकान 1963 में सामने आया और फिर 1967 में आखिरी दिन की तलाश, तीसरी किताब और चौथा आसमान का प्रकाशन हुआ। उनके जो चौथा आसमान था इसके लिए उन्हें साल 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मोहम्मद अलवी लिखते हैं कि लबों पर यूं ही सी हंसी भेज दे, मुझे मेरी पहली खुशी भेज दे, अंधेरा है कैसे तेरा खत पढ़ूं, लिफाफे में कुछ रोशनी भेज दे।
वंडरफुल, एक्सलेंट। टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ खलील जिब्रान, रेफर टू एज खलील जिब्रान, एंड ही पास्ड अवे ऑन दिस डे 1931। ही वाज अ लेबनीज अमेरिकन राइटर, पोएट एंड विजुअल आर्टिस्ट हु वाज कंसिडर्ड अ फिलोसोफर, ऑल्दो ही रिजेक्टेड द टाइटल। ही इज बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ द प्रॉफिट, the first published in the US in 1923 and has since become one of the best selling books of all time, having been translated into more than 100 languages.
aur aaj ke din is duniya ko alvida kaha Shiv Kumar Subramanian ne jo diggaj bharatiya abhineta puraskar vijeta lekhak the, two states Meenakshi Sundareshwar, teen patti aur kai हिंदी फिल्मों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वो लोकप्रिय थे। अपने शानदार करियर के दौरान शिव कुमार को उनकी फिल्म परिंदा और हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में रिलीज हुई फिल्म परिंदा का आइए सुनते हैं ये गीत।
तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, तुमसे मिल ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल।
Amanda Leigh Moore was born on this day in 1984. She is an American singer, songwriter and actress. She rose to fame with her debut single Candy, which peaked at the 41st number on the Billboard Hot 100. Her debut studio album Surreal received the platinum certification from the RIAA. We have her best-selling song and let's listen it to it.
प्रतिथि है शांति हीरानंद चावला जी की, जो जानी मानी शास्त्रीय संगीतज्ञ, गजल गायिका और पद्मश्री से सम्मानित कलाकार थीं। मलिकाए गजल बेगम अख्तर की रवायत को कायम रखने वाली सबसे मजबूत स्तंभ डॉक्टर शांति हीरानंद जी को ठुमरी, गजल, दादरा, उन्होंने इसको बहुत ही खूबसूरती से निभाया। आई सुनते हैं।
कभी चांद राहों में Hey
और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। एक खूबसूरत शाम की कामना के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और वीसी प्रमोद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड।